आज है 31 जनवरी दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के 16 बरस बाद देश के 70% इलाकों में तालिबान का वर्चस्व, पर क्या वो सत्ता में लौटेंगे?
ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। 70% इलाके में घूम फिर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे उनका कंट्रोल तो नहीं है।
आज दुनिया जहान में भी चर्चा इसी बात पर कि अफगानिस्तान में अमन नदारद क्यों।
लेकिन जब तक प्रॉक्सी पॉलिटिक्स जारी रहेगा तो ना अफगानिस्तान में अमन आएगा और ना रीजन में सिक्योरिटी आएगी।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अमेठी में भी तनाव, और आसमान में नील चंद्र और रक्त चंद्र की अद्भुत कलाएं। पर ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। बीबीसी की एक पड़ताल से पता चला है कि अफगानिस्तान की सरकार देश के लगभग 70% हिस्से पर अपना प्रभाव खो चुकी है। ये वो इलाके हैं जहां तालिबान चरमपंथियों ने बीते कुछ वर्षों में अपने पैर मजबूती से जमाए हैं। बीबीसी की ये पड़ताल नेटो के उस आकलन के विपरीत है जिसमें दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के सिर्फ 44% हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण है। अफगानिस्तान की सरकार ने बीबीसी की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि देश का ज्यादातर हिस्सा सरकार के नियंत्रण में है। भारत के आसमान पर इस समय एक दुर्लभ खगोलीय दृश्य नजर आ रहा है। इस समय चंद्रमा आम दिनों की तुलना में अधिक बड़ा और चमकदार नजर आ रहा है। साल 2018 का ये पहला चंद्र ग्रहण है। नासा के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा नज़ारा भारत और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रहा है। भारत के अलावा ये दुर्लभ नज़ारा समूचे उत्तर अमेरिका, प्रशांत क्षेत्र, पूर्वी एशिया, रूस के पूर्वी भाग, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी दिखाई देगा। हॉलीवुड फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री एंजेलिना जोली युद्ध के दौरान यौन हिंसा को रोकने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अब नेटो के साथ मिलकर काम करेंगी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत एंजेलिना जोली ने नेटो के मुख्यालय ब्रसल्स में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर चिंता जताई है कि दुनिया भर में संघर्ष वाले इलाकों में यौन हिंसा बढ़ती जा रही है।
This is rape used as a weapon. To achieve military or political goals, it affects
बलात्कार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बलात्कार के जरिए सैन्य और राजनीतिक लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। बलात्कार को राजनीतिक नियंत्रण, चरमपंथ के प्रसार और जातीय हिंसा का हथियार बना लिया गया है। इसकी वजह से शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह से शांति का लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये थे हॉलीवुड फिल्मों की अभिनेत्री एंजेलिना जोली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में अधिकारियों का कहना है कि पिछले हफ्ते सेना की फायरिंग में जख्मी हुए एक किशोर ने दम तोड़ दिया है। 19 वर्षीय रईस अहमद गनी उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थे जिनकी शोपियां जिले में सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। इसके साथ ही पिछले हफ्ते सेना की फायरिंग में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारतीय सैनिकों का कहना है कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई थीं क्योंकि प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे थे। चीन ने कहा है कि यूरोपीय संघ से अलग होने की वजह से ब्रिटेन और चीन के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक ब्रिटेन अगले साल मार्च में यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। राजधानी बीजिंग में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने कहा कि चीन ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना जारी रखेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रिटेन के दुनिया के बाकी हिस्सों से संबंध कैसे हैं। चीन अपनी नीति पर कायम रहेगा और वो नीति ये है कि ब्रिटेन के साथ दोस्ताना संबंध विकसित करना। चीन ब्रिटेन संबंधों का भविष्य बहुत उज्जवल है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये थे चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में अपने पहले स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में कहा है कि वे डेमोक्रेट सांसदों की ओर से इस उम्मीद से हाथ बढ़ा रहे हैं कि वो साथ मिलकर काम कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना के लिए अधिक धनराशि की अपील की और चेतावनी दी कि अमरीका की बेमिसाल ताकत खतरों से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को, जैसा कि आप जानते ही हैं, फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। सन 2001 की सर्दियों में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब कहा गया था कि अब अफगान लोग आज़ाद हो गए हैं, पर अब कई महीनों तक चली बीबीसी की एक पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि अफगानिस्तान के 70% हिस्से में तालिबान सक्रिय है और खुलेआम कार्रवाई करने को आज़ाद है। हालांकि अफगान सरकार ने इस रिपोर्ट को नकारा है और दावा किया है कि अधिकतर इलाके उसके नियंत्रण में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में विदेशी लड़ाकू फौजों के देश छोड़ने के बाद से तालिबान ने अपना नियंत्रण वाले इलाकों का विस्तार किया है। सुनिए बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार ब्रजेश मिश्रा से।
बीबीसी ने अफगानिस्तान के सभी 399 जिलों में करीब 1200 लोगों से बातचीत की और अब तक हुए चरमपंथी हमलों को लेकर रिपोर्ट तैयार की। अमेरिका के करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी अफगानिस्तान के 70% हिस्से में तालिबान सक्रिय है। तालिबान और इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के हमलों में काबुल और दूसरी जगहों पर काफ़ी लोग मारे गए। बीबीसी के पड़ताल में ये भी सामने आया कि पहले के मुकाबले अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की सक्रियता भी बढ़ रही है, हालांकि ये तालिबान के मुकाबले कम ताकतवर है। स्टडी से पता चला है कि अफगानिस्तान के 14 जिलों यानी 4% हिस्से पर तालिबान का पूरा नियंत्रण है, साथ ही 263 जिलों यानी 66% हिस्से में उसकी खुली सक्रियता है, जो पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक है। रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान की आधी आबादी उन इलाकों में रहती है जो या तो तालिबान के कब्जे में है या फिर तालिबान वहाँ सक्रिय है और लगातार हमले कर रहा है। तालिबान का गढ़ कहे जाने वाले अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत पहुंचे बीबीसी संवाददाता औलिया अतराफी ने वहाँ की असली हालत को अपनी आंखों से देखा।
We just got fired at by the Taliban from that direction and now the police are returning the fire.
हमारे पीछे दूसरी दिशा से गोलीबारी हो रही है, पुलिस भी जवाबी फायरिंग कर रही है। ये एक फ्रंट लाइन है, यहाँ दिन में दोनों तरफ से अपनी ताकत दिखाने के लिए गोलियाँ चलती हैं।
औलिया अतराफी ने विस्थापितों के एक कैंप में जाकर वहाँ भी कई लोगों से बातचीत की।
हम क्रॉस फायरिंग में फंस गए थे, एक तरफ से तालिबान की गोलियां चल रही थी, दूसरी ओर से सरकार की। एक हमले में मैंने अपने पिता और भाई को खो दिया।
युद्ध के चलते अनाथ हो चुके एक युवक ने कहा।
मेरे पिता को मार डाला गया, मैं घायल था, मैंने अपने दोनों पैर खो दिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं अब दूसरों पर आश्रित हूँ।
इस सबसे साबित होता है कि तालिबान ने दक्षिणी इलाके से निकलकर पूर्व पश्चिम और उत्तरी हिस्सों में अपना विस्तार किया है। जो इलाके साल 2014 के बाद तालिबान के कब्जे में आए हैं उनमें हेलमंद प्रांत के सेंगिन, मूसा काला और नाद ए अली शामिल हैं। ये वो जगहें हैं जिन्हें सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए अमरीका की अगुवाई वाली फौजों ने लड़ाई लड़ी थी और 2001 में तालिबान को यहाँ से बाहर किया था। 2001 से 2014 के बीच यहाँ 450 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। ब्रजेश मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत यानी अमेरिका तालिबान के खिलाफ है, फिर भी तालिबान को नेस्त तो नाबूद करना तो दूर, अमेरिका उसके विस्तार को नहीं रोक पाया है। मैंने इसका कारण जानने के लिए पाकिस्तान के पेशावर शहर में वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जई से संपर्क किया और पूछा कि तालिबान की ताकत का राज क्या है।
देखें, एक तो शायद जो उनका मकसद है, जो कॉल है, जिस चीज के लिए वो लड़ रहे हैं, उसको मेरे ख्याल में काफी अवामी हिमायत हासिल है। यानी तालिबान ये दावा करते हैं कि गैर मुल्की फौजें आई, गैर मुस्लिम फौजें आई, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और अपनी मर्जी का निज़ाम लेकर आए। तो ये तालिबान अक्सर ये दावा करते हैं कि वो अपने वतन के लिए और इस्लाम के लिए जंग कर रहे हैं और वो उसको जिहाद का नाम देते हैं और अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं।
चाहे कितना ही बड़ा मुजाहिद हो, कितना ही ज्यादा वो इस्लाम का नाम ले, जब ऊपर से जंगी जहाज आग बरसा रहे हों और जो दुनिया के सबसे बड़ी फौजी ताकत है उसके फौजी आपके मुल्क में हों, उससे आप टक्कर लेने के लिए आपको भी तो बारूद चाहिए, फायर पावर चाहिए। सिर्फ लोगों को कन्विंस करके ही तो आप जंग नहीं जीत सकते हैं। तालिबान कैसे अभी तक टिके हुए हैं, सवाल ये है।
हाँ बिल्कुल, देखें अफगानिस्तान में एक तो असलहे की कमी नहीं है, वहाँ पे आप देखें 38 साल से जंग हो रही है। रूसी आए, सोवियत यूनियन और दुनिया के कई मुल्कों से वहाँ पे वेपन्स आए, तो अभी भी उनको वेपन्स मेरे ख्याल में कोई उनके पास कमी नहीं है। और एक तो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है वो बहुत ही कमजोर है, तो वहाँ पे ये असलहा और बारूद और ये मंशियात जो है नारकोटिक्स, इनका भी आना जाना बिल्कुल आसान है, चाहे वो पाकिस्तान चाहे ईरान चाहे उनके जो बाकी बॉर्डर हैं। और मेरे ख्याल में ये तालिबान को काफी चंदे मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं, अरब मुल्कों से भी मिलते हैं, पाकिस्तान में भी मिलते हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी उनको डोनेशन मिलते हैं।
अब 70% इलाके में अगर तालिबान फ्रीली घूम रहे हैं, आजादी के साथ घूम रहे हैं, तो क्या एक मौका ऐसा भी आ सकता है कि वहाँ अफगानिस्तान की सत्ता पर फिर से वो काबिज हो जाए?
फिलहाल तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ये 70% इलाके में घूम फिर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे उनका कंट्रोल तो नहीं है। उनका अपना जो निजाम है, अपने उनके जो शेडो गवर्नर हैं या कोर्ट्स हैं या इस तरह का निजाम है, वो इस पूरे इलाके में नहीं है। यानी देखें, कोई भी शहर जो है वो तालिबान के कब्जे में नहीं है। 34 सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, कोई एक मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्जे में नहीं है। उनके जो बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, किसी बॉर्डर में कोई बॉर्डर जो क्रॉसिंग है वो तालिबान के कब्जे में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि तालिबान का निज़ाम जो है वो पूरे अफगानिस्तान में है। और ये अक्सर जो तालिबान का कंट्रोल है, ये वहाँ पे जो अगर जंग भी हो रही है तो ये देहाती इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं। शहरी इलाकों में तो अभी भी अफगान हुकूमत का कंट्रोल है, उनका अपना एक निज़ाम है, पार्लियामेंट है, मीडिया भी काफी वहाँ पे यानी फैल गया है, लेकिन ये है कि तालिबान को शिकस्त नहीं हो सकी।
ये थे पेशावर से वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजई। अफगानिस्तान की स्थिति पर वात्सल्य राय से थोड़ी देर में सुनिएगा दुनिया जहान, पर पहले खबर उत्तर प्रदेश से।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी को भड़की हिंसा के दौरान मारे गए युवक चंदन गुप्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने सलीम नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। दो अन्य अभियुक्त अब भी फरार हैं। इस बीच जहां अमेठी के जगदीशपुर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है, वहीं राज्य के कई अन्य जिलों से भी तिरंगा यात्रा निकालने की घटनाएं सामने आई हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कासगंज में पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक तनाव शहरी इलाकों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए युवक चंदन की हत्या के कथित तौर पर एक प्रमुख अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। इस मामले में 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। 2 अभियुक्त घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कासगंज के डीएम आरपी सिंह ने बताया,
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी। उससे रिलेटेड जो FIR थी उसमें नेम्ड में से 7 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी, लेकिन मुख्य अभियुक्त सलीम की तलाश लगातार टीम कर रही थी। आज वो टीम के हाथ लग गया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उससे पूछताछ जारी है।
कासगंज का सांप्रदायिक उबाल अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। तब तक अमेठी के पास जगदीशपुर कस्बे में भी सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। मंगलवार को 2 पक्षों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। उसके बाद से ही इलाके में तनाव है और पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। कासगंज की सांप्रदायिक हिंसा तिरंगा यात्रा को लेकर शुरू हुई थी, जो अभी तक नहीं थमी है। इस बीच राज्य के दूसरे शहरों जैसे शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और मथुरा में भी बुधवार को तिरंगा यात्रा निकालने और कई अन्य शहरों में कासगंज में मारे गए चंदन गुप्ता की याद में शोक सभा होने के समाचार हैं। बताया जा रहा है कि ये सारी घटनाएं सांप्रदायिक लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं, इसीलिए प्रशासन की इस पर पूरी नजर भी है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने BBC को बताया,
स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने इस बात का निर्णय लिया है। मेरी जानकारी में 4-5 जगह पर इस तरह की तिरंगा यात्रा और ज्ञापन लिए गए हैं और कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं है। ये स्थानीय जिला प्रशासन तय करता है कि वहाँ की परिस्थिति कैसी है, और मेरे विचार से अगर केवल तिरंगा इसमें इन्वॉल्व है तो तिरंगा सब चीज से जाति धर्म सबसे ऊपर होता है, नेशनल सिंबल होता है, तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वहाँ के जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया होगा।
इस बीच पिछले 2 दिनों में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला किया है। आशंका जताई जा रही थी कि फेसबुक पर कासगंज हिंसा को लेकर टिप्पणी करने वाले बरेली के डीएम आर विक्रम सिंह भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने उनके तबादले की जरूरत नहीं समझी है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी और अब वक्त है दुनिया जहान का। साल 2018 के पहले महीने में अफगानिस्तान एक बार फिर लहूलुहान नजर आने लगा है। अफगान तालिबान और कथित इस्लामिक स्टेट ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। राजधानी काबुल को केंद्र मानकर किए गए हमलों के बाद अफगान सरकार की कमजोरी और अमरीकी रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है वात्सल्य राय की दुनिया जहान।
दुनिया जहान।
اتفاق پیشین طلال تکرار نشه
یہ آواز افغانستان کے ایک ٹی وی پریزنٹر کی ہے جو 21 جنوری کو راجدھانی کابل کے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل سے پرسارت تصویروں کی جانکاری دے رہے تھے
تصویر خیلی جدی و تکان دہندہ
پورا درش عجب سا تھا ہوٹل میں رکے کچھ گیسٹ نے چادروں کو باہری بالکنی پر لٹکا دیا تھا اور خود ان کے سہارے لٹک کر نیچے اتر رہے تھے یہ سٹنٹ ان کی مجبوری تھی कुछ घंटे पहले यानी 20 जनवरी की रात 9 बजे के करीब गोलियां चलाते और ग्रेनेड फेंकते आधा दर्जन हथियारबंद लोग होटल में दाखिल हुए थे। उन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और कमर में विस्फोटक बांधे हुए थे। 13 घंटे के कड़े संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने जब आखिरी हमलावर को मार गिराया तब तक कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें ज्यादातर विदेशी थे। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली। 24 जनवरी को एक और हमला हुआ। राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर जलालाबाद में बच्चों को मदद मुहैया कराने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन के दफ्तर को निशाना बनाया गया। इस हमले की जिम्मेदारी कथित इस्लामिक स्टेट ने ली। 3 दिन बाद यानी बीते शनिवार 27 जनवरी को राजधानी काबुल एक और धमाके से थर्रा उठी। इस धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली। इसके 2 दिन बाद सोमवार 29 जनवरी को काबुल में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। हमले में 11 सैनिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी कथित इस्लामिक स्टेट ने ली। अफगान इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख ने आशंका जताई कि ये हमले पाकिस्तान पर बढ़ते अमरीकी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। इस साल की शुरुआत में अमरीका ने पाकिस्तान पर डबल गेम का आरोप लगाते हुए उसकी सुरक्षा मदद रोकने का ऐलान किया था। बीबीसी पश्तो सेवा के लंदन में मौजूद वरिष्ठ संवाददाता दाऊद आजमी भी अफगानिस्तान में अचानक बढ़े हमलों को अमरीकी नीति का असर मानते हैं, लेकिन वो इसे तालिबान और कथित इस्लामिक स्टेट पर की गई सख्ती के असर के तौर पर देखते हैं।
जब से सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान और साउथ एशिया के लिए अपनी नई स्ट्रेटजी का ऐलान किया तो उसके मुताबिक अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स जो हैं तालिबान के खिलाफ और आईएस के खिलाफ वो बढ़ गई हैं और बहुत से तालिबान उन हमलों में मारे गए हैं। ये एक किस्म से तालिबान का रिएक्शन भी है।
आजमी की राय में रणनीति कथित इस्लामिक स्टेट ने भी बदली है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में सीमित ताकत रखने वाला इस्लामिक स्टेट जब काबुल में अहम ठिकानों को निशाना बनाता है तो पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है। ऐसे हमलों के जरिए तालिबान और इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान सरकार को कमजोर दिखाने की भी कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में 3 साल तक भारत के राजदूत रहे राकेश सूद को भी लगता है कि अफगानिस्तान पुरानी स्थिति में लौट रहा है, जहां राष्ट्रपति अशरफ गनी की मौजूदा सरकार पूरी तरह असहाय नजर आती है।
सरकार कमजोर है, अटैक्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अमेरिका और बाकी मुल्क जो है उनका जो धैर्य है वो भी समाप्त हो रहा है। यहाँ तक हालत हो गई है कि मजार शरीफ में जो गवर्नर हैं मोहम्मद अटानू तो उनको अशरफ घानी ने बर्खास्त कर दिया नौकरी से। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो यही रहूंगा और अगर नया गवर्नर जिसकी नियुक्ति की अगर वो आए तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा।
ये स्थिति तब है जब अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या और खर्च बढ़ाने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत देकर अधिकारियों पर दबाव बढ़ा दिया है कि वो शीघ्र नतीजे चाहते हैं। लेकिन दाऊद आजमी कहते हैं कि जैसे तालिबान के लिए अफगान सरकार को गिराना मुमकिन नहीं, वैसे ही अमरीका और नेटो सेनाओं के लिए तालिबान को पूरी तरह खत्म करना अब तक दूर की कौड़ी है।
ये शक किया जाता है कि ईरान चूंकि दाइश के खिलाफ है तो हो सकता है कि वो तालिबान को सपोर्ट कर ले। कुछ लोकल अफगान ऑफिशियल जो है उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है और बाज़ ने तो ये भी कहा है कि ईरान की तरफ से असलहा आता है तालिबान के लिए। उन्होंने तो ये तक भी कहा है कि ईरान में अफगान तालिबान के कुछ ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लेकिन ईरान की हुकूमत इसको रद्द करती है।
वही राकेश सूद कहते हैं कि हाल के बरसों में तालिबान को लेकर रूस की सोच भी बदल रही है।
रशिया की पोजीशन अब एक तरह से 180 डिग्री बदल गई है। रशिया पहले तालिबान के बिल्कुल विरोध में था, अब रशिया ने कहना शुरू किया है तालिबान तो अफगान ही हैं, तो तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना ही है और सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस्लामिक स्टेट का है, इसलिए तालिबान के साथ बना के उनको हमको इस्लामिक स्टेट के विरोध में खड़ा करना चाहिए।
अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि वो अभी तालिबान से बातचीत के पक्ष में नहीं है।
I don't see any talking taking place. I don't think we're prepared to talk right now. It's a whole different.
मुझे नहीं लगता कि बातचीत हो सकती है। मैं नहीं समझता कि हम अभी बातचीत के लिए तैयार हैं। वहाँ एक अलग संघर्ष चल रहा है, वो मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, अफगानिस्तान में बच्चों और परिवारों के बीच बम गिराए जा रहे हैं, इसलिए हम तालिबान से बातचीत नहीं करना चाहते।
उधर जमीन पर स्थिति ये है कि अफगानिस्तान मुश्किलों के दलदल में फंसता जा रहा है, GDP घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। रूस और ईरान जैसे देश अमरीका को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा करते हैं कि वो चरमपंथ और ड्रग्स से मुक्ति के उद्देश्यों को पूरा करने में नाकाम रहा है। राकेश सूद इन दोनों को जुड़ी हुई दिक्कत बताते हैं।
इसकी वजह से ये हुआ है, ये टेररिज्म की वजह से कि वहाँ पर ये अफीम की पैदावार हेरोइन के लिए बढ़ गई है। अगर किसान की मजबूरी होगी और दूसरी तरफ तालिबान आके उसको कहेगा कि तुम अफीम उगाओ मैं तुमको डबल पैसा दूंगा, तो वो मजबूर होकर क्या करेगा।
तमाम मजबूरियों के बीच घिरे और हर दिन नई चोट झेलने के बाद भी अफगानिस्तान ने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। राकेश सूद बताते हैं कि वो अफगानिस्तान में जहां भी गए लोगों ने उनसे कहा कि वो शांति और विकास चाहते हैं। कई अहम सभ्यताओं से रूबरू हुए अफगानिस्तान में जिंदगी को दोबारा मुस्कुराते देखने की ख्वाहिश बाकी है।
जब हमने एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की 2005 में दिल्ली काबुल, पहली फ्लाइट में निजामी ब्रदर्स करके कवाल हैं बहुत मशहूर हिंदुस्तान के, तो उनका ट्रूप वहां आया, उन्होंने वहां पे कार्यक्रम किए। कार्यक्रम खत्म हुआ से तो मैं वहां पर ऑडिटोरियम दरवाजे में खड़ा था, गले लगाया, धन्यवाद किया और कहा सफीर साहब हम कभी ये सोच नहीं सकते थे कि ये संगीत हम दोबारा सुनेंगे।
अफगानिस्तान में अब संगीत के सुरों से ज्यादा धमाके सुनाई देते हैं, लेकिन क्या हालात बदल सकते हैं? इस सवाल पर दाऊद आजमी कहते हैं,
अफगानिस्तान में अमन लानी है तो ये रीजनल कोऑपरेशन से होगा, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान ये सब अगर मिल के बैठ जाएं और इस पर इत्तेफाक कर लें कि हम एक एजेंडे पे बात करेंगे और वो ये है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए। लेकिन जब तक प्रॉक्सी पॉलिटिक्स जारी रहेगा तो ना अफगानिस्तान में अमन आएगा और ना रीजन में सिक्योरिटी आएगी।
वहीं राकेश सूद की राय है कि सिर्फ सरकार या सेना अफगानिस्तान में बदलाव नहीं ला सकती है।
इसीलिए प्रेसिडेंट करजई हमेशा ये कहा करते थे कि हमारी तो एक पूरी जनरेशन इस जंग में मारी गई है।
सूद ये भी कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान आग का ये दरिया पार नहीं कर पाया तो असर सब पर होगा, पाकिस्तान पर, मध्य एशिया और ईरान पर, रूस और अमेरिका पर और भारत पर भी। लेकिन सवाल ये भी है कि हिंसा की ये आग कब और कैसे बुझेगी।
उम्मीद है दुनिया जहान का ये अंक आपको पसंद आया होगा।
खबर सच है अगर BBC पर है।
दिन भर कार्यक्रम आप BBC हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा था, नगर के बीचों बीच आधी रात अंधेरे की काली स्याह शिलाओं से बनी हुई, भीतों और अहातों के कांच टुकड़े जमे हुए ऊंचे ऊंचे कंधों पर, चांदनी की फैली हुई संवलाई झालरें, कारखाना अहाते के उस पार धूम रुमुख चिमनियों के ऊंचे ऊंचे उद्गार चिन्हाकार मीनार, मीनारों के बीचों बीच चांद का मुंह टेढ़ा है। पर आज चांद का मुंह टेढ़ा नहीं बल्कि उजला है, रक्ताब है, नीलाब है। इसे रक्तचंद्र, नीलचंद्र कहा गया। सुनिए सिंधुवासिनी ने कैसा चांद देखा।
भारत समेत दुनिया के कई देश आज एक दुर्लभ खगोली घटनाओं का चश्मदीद बन रहे हैं। आज शाम चंद्र ग्रहण, सुपर मून और ब्लू मून या ब्लड मून, ये तीनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। ऐसा 152 साल बाद हो रहा है, इसलिए इसे एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। दिल्ली स्थित नेहरू प्लेनेटोरियम के डायरेक्टर डॉक्टर एन श्री रत्ना ने बताया कि ये इतना खास क्यों है।
जब आपको अर्थ मून सन, ठीक है ना, सनलाइट अर्थ ने रोका। नॉर्मली यही जब होता है, फुल मून होता है थोड़ा ऊपर नीचे, तो आपको सनलाइट जो है गिर रहा है इस पे, वापस पृथ्वी पे आ रहा है, यू सी द फुल मून, और एग्जैक्ट अलाइनमेंट हुआ। सो यहाँ द फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स एक साथ हो रहा है।
तो आखिर ये तीनों चीजें हैं क्या? पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। पूर्णिमा के दिन जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा के जिन हिस्सों पर यह छाया पड़ती है उन पर अंधेरा हो जाता है, और जब हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो ये छाया वाले हिस्से हमें काले दिखाई देते हैं। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। वहीं सुपर मून वो खगोली घटना है जिसके दौरान पृथ्वी और चंद्रमा सबसे ज्यादा करीब होते हैं, यानी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है। यही वजह है कि इस दौरान चंद्रमा की चमक तकरीबन 14% ज्यादा होती है। अब बात ब्लड मून या ब्लू मून की करते हैं। ये स्थिति तब होती है जब पृथ्वी की छाया चांद पर तो पड़ती है, लेकिन साथ ही सूरज की किरणें भी छितराकर चांद पर पड़ती हैं, इसलिए चांद का रंग तांबे जैसा लाल दिखाई देता है। कल्पना अपने दो बच्चों के साथ इस खास लम्हे का गवाह बनने आई हैं।
क्यूरियोसिटी रहती है यूनिवर्स के बारे में, मून सन प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए।
दिलचस्प बात यह है कि 33 साल से कम उम्र के लोगों के लिए पहला मौका होगा जब वे इस घटना का गवाह बन रहे हैं। नासा के मुताबिक पिछली बार ऐसा ग्रहण 1982 में लगा था और अब इसका मौका 2033 में, यानी 25 साल बाद आएगा।
यानी ये चांद आपको हमेशा याद रखेगा और आप भी चांद को याद रखेंगे। एक नजर खेलों की दुनिया पर।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बॉक्सिंग के रिंग में, जहां पर $1,00,000 इनामी इंडिया ओपन मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में मैरी कॉम और शिव थापा प्रवेश कर चुके हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने वर्ग में पदक पक्के कर लिए हैं। 5 बार की विश्व और एशियाई चैंपियन रही मैरी कॉम ने बीना देवी को 5-0 से हराकर जीत दर्ज की। महिलाओं के वर्ग में सरिता देवी भी सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही हैं। उन्होंने थाईलैंड की पीम विलाई लायोपीम को 4-1 से पराजित किया। तो वहीं शिव थापा ने उज्बेकिस्तान के बॉक्सर को मात दी। ये सभी मुकाबले दिल्ली में खेले जा रहे हैं। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। इसके लिए देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत संरचना का निर्माण किया जाएगा, ताकि भारत खेलों में अपना सिक्का जमा सके। दिल्ली में खेलो इंडिया का आयोजन 31 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा, जिसमें 17 साल से कम उम्र के युवा 16 खेलों में हिस्सा लेंगे। और अब आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां हैदराबाद के कप्तान अंबाती रायडू को 11 जनवरी को कर्नाटक के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच के दौरान बीसीसीआई आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने आज एक प्रेस रिलीज में इस बात का खुलासा किया, जिसका मतलब है कि आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के पहले 2 मैचों में अंबाती रायडू भाग नहीं ले पाएंगे। और 2010 में मैच फिक्सिंग के दोषी पाए गए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान भट्ट एक बार फिर से फिक्सिंग के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने इस बात की पुष्टि की है कि हाल ही में कंक्लूड हुए अजमान ऑल स्टार T20 लीग की जाँच चल रही है, जहाँ भट्ट को भी देखा गया था। टूर्नामेंट के प्रसारण फुटेज देखने के बाद आईसीसी हरकत में आई है। वीडियो में कुछ खिलाड़ियों को विवादित तरीके से आउट होते देखा गया है, जबकि कुछ का व्यवहार संदेहपूर्ण लग रहा है।
सूर्यांशी पांडे ने सुनाए मुख्य समाचार, खेल समाचार, लेकिन मुख्य समाचारों का समय अब नहीं है, इसलिए अब राजेश जोशी आपसे इजाजत चाहता है। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने, और फेसबुक के जरिए आप तक इसे पहुंचाने में मदद की ब्रजेश मिश्रा ने। सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आपको मैं आमंत्रित करता हूं bbchindi.com अपनी वेबसाइट पर, जहां बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, आप हमारे सभी कार्यक्रम वहाँ सुन सकते हैं। शुभ रात्रि।